ओम शांति। युग बदलने का समय समीप आ गया है, युग बदलने का समय समीप आ गया है। ये दशक, दशक समझते हैं ना, 20 से 30, इसमें युग परिवर्तन का बहुत सारा खेल होगा। धरती बदलेगी, आकाश भी बदलेगा, वायु भी बदलेगी, जल भी बदलेगा, और अग्नि तो बहुत काम करेगी, सब बदलेगा। हमें इसमें मुख्य काम करना है। क्या करना है? वो तो छोटी बात हो गई, पुरानी हो गई, आपने तो बदल दिया अपने को, तो सब बदले हुए बैठे हैं। हमें सबको मदद करनी है। मैं हर बार आपको ये याद दिलाता हूँ, रोज अपने को याद दिलाना है, मदद करनी है दूसरों को। अभी मैं आ रहा था, फोन आ गया किसी का, मैं ये तो पूछता नहीं कौन है, कहाँ से, कैंसर है किसी को, कहा सबने जवाब दे दिया है, घर ले आए हैं। मैंने उसको विधि बताई, ऐसा ऐसा करो, थोड़ा मदद मिलेगी। कहा आप भी उसके लिए योगदान करो। कैसी दीनहीन भावना से उसने कहा। मैंने कहा हाँ, हम तो करते ही हैं और अब करेंगे। तो संसार की अनेक आत्माएं अब हमसे सीधा कहेंगी, मदद करो हमें। तो हमें अपने को तैयार करना है। सभी अब इस बड़े कार्य को देखें, छोटी चीजों से ऊपर उठ जाना है हम सबको, कि जो छोटी चीजों में उलझे रहेंगे वो ये बड़े काम नहीं कर सकेंगे। जिसने अपनी हद की सभी इच्छाएं त्याग दी हैं, वही सबकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। ये भी इच्छा है ना, हमें मदद करो। लोग सीधा बोलते हैं हमें मदद करो। नीचे शांतिवन में कितने केस अब ऐसे आए, पहले बहुवे सास से तंग होती थी, अब बदल गया खेल, अब बहुवे सास को तंग करती है, कहती है हमें मदद करो, क्या करे। मैंने कहा भी सास बहु तुम, मैं कैसे पहुंचू तुम्हारे घर में मदद करने, तुम्हें सेंसेस बनो, थोड़ा सम्मान दो, बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़े लिखे हैं, अब वो वैसे तो नहीं है जैसे 30-40-50 साल पहले होते थे। सबका बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक और चीज सुना दूं, हम सब तो उनसे मुक्त हैं, लेकिन संसार के लिए, अभी मुकेश भाई साउंड वाले हैं ना, रिकॉर्डिंग करने आए थे मुरली, तो मुझे चाइना की एक वीडियो दिखाई, छोटी सी दिखाई मुझे, तो आधा ही मिनट मैंने देखी, एक मिनट। तो बहुत सारे लोग जिन पे कोरोना वायरस का इफेक्ट हो गया है, पड़े हैं, और उसने क्या दिखाया, ये वंडरफुल बात है, और मनुष्यों को संभलने और समझने का वृतांत है, घटना है, कि जिन्होंने कुत्ते के मांस खाए हैं उनकी स्थिति कुत्ते जैसी, वो चल भी वैसे रहे हैं। जिन्होंने सांप के मांस खाए, वहां ये भी खाया जाता है सब, वो लेट कर रेंग रहे हैं सांप की तरह, वो उस वीडियो में दिखा रहे हैं सब। जिन्होंने चमगादड़ का जूस पिया है, वहां ये है, अब मुझे तो पता नहीं था, मैं आज ही उसमें देखा, वो चमगादड़ की तरह कर रहे हैं। 5-7 चीजें दिखाई। मैंने कहा भारत में लोग बहुत मुर्गे खाते हैं, तो कुकड़ू कू करेंगे सवेरे, सबको उठाएंगे, और बकरी बकरी खाते हैं तो मैं करेंगे। तो देखो कैसा कर्मों का खेल चालू हो गया, वो सारा प्रभाव तत्काल आ गया है। और ये वहां बताया जा रहा है, मुझे भी आज बताया कि कोई मार्केट है बड़ा जिसमें ये सब बिकते हैं जानवरों का, वहां से ही फैला है ये सब कुछ। तो कैसी दयनीय स्थिति अब आती जाएगी, कर्मों का खेल भी पूरा होगा सबका, जिसने जो किया है वो तो चुप तो होना ही है, उसके बिना तो ऑटोमेटिक गति है, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन अब ये युग बदलेगा, धरती बदलेगी, तो धरती में बहुत परिवर्तन होंगे, भूकंप होंगे, वो कष्टकारी भी होगा और कल्याणकारी भी होगा। हवा बहुत दूषित हो गई है, गंदी हो गई है, वो भी पावन होनी है। ऐसी घटनाएं होंगी चक्र में कि सब प्योरीफाई हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये चक्र ही ऐसा, देखो जैसे अब चक्र बना, एक छोटा सा चक्र जिसको आप में से बहुत लोग आराम से समझेंगे। अब खेती की स्थिति ऐसी हो गई कि बिना रासायनिक खाद डाले पैदावार नहीं होगी, किसान भी भूखे और किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। सब्जियां जो उगाई जाती हैं उस पर अगर कीटनाशक न डाले जाएं तो कीड़े उनको नष्ट कर देंगे, मनुष्य भी नहीं खा पाएंगे, कीड़े आ जाएंगे अंदर बहुत, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, प्रदूषण है, गंदगी है हवा में, वो आ जाता है नीचे। अब देखिए ये सब डाला जा रहा है, इससे बढ़ रही हैं बीमारियां, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, इससे और भी बीमारियां बढ़ रही हैं। अभी ये बीमारियां बढ़ रही हैं, वो डालना भी जरूरी है, न डालें तो कुछ मिलेगा नहीं, कैसा विशियस सर्किल बन गया ना, बच नहीं सकता मनुष्य, निकल नहीं सकता इससे। तो ये सब अब बदलेगा। मेरे को तो मधुबन में एक भाई ने एक अखबार की कटिंग दी, उसमें व्हाट्सएप के बारे में चर्चा आई कि अमेरिका में लोग व्हाट्सएप के शौकीन नहीं हैं, कटने ही नहीं दिया उनको, और उसका कारण गिनाया इससे कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, चार बीमारियां बढ़ रही हैं संसार में व्हाट्सएप से। इसलिए जो ज्यादा यूज करते हैं वो इसमें कम कर दें, संभलेंगे, थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बहुत यूज करते हैं उसका इफेक्ट बहुत बुरा हो रहा है। कितना जब फोन आता है तो आप नोट किया हो कैसी पावरफुल तरंगे फैलती, मैं घूम रहा था, कोट की जेब में था, अब वो बजने लगी घंटी, कितनी जो दूर तक उसका प्रभाव दिखाई दे रहा था। मैंने कहा कितने खतरनाक है रेडिएशन, हम बचेंगे इन चीजों से थोड़ा, और विशेष रूप से मैं आप सबको जानते हैं भाई, तो पास रखकर मोबाइल को नहीं सोएंगे, पास चाहे बंद भी कर दिया ना आपने, बंद करने के बाद भी उससे निकलता रहता है कुछ कुछ, इसलिए अपने पास से थोड़ा दूर, मिनिमम 2-2.5 फुट दूर तो रखना ही चाहिए, इससे भी दूर रख सके तो अच्छा होगा। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, चित्त को शांत करना है, इसलिए मैं सभी का ध्यान आज एक बात पर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे कई भाई बहने आए नीचे से अंतिवन में, हम बहुत परेशान हैं। मैंने उनकी बात सुनी, परेशान क्यों हैं? तो दो बातें पहले समझ में आई, क्यों होता है मनुष्य परेशान, भाई लोग बताओ, अमित थोड़ा गहराई में चलो, हाँ ये भाई ये कारण है, थोड़ा गहराई से देखो। जब मैंने उनसे पूछा तो उनकी समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं थी, ज्यादा सोचने की आदत, कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, परेशान। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, मुझे पता नहीं वो कौन और कहां से थी बहन, उसने बताया। दूसरा एक असली कारण, वो लोग बहुत दुखी और परेशान हैं जिनका पाप कर्मों का खाता ज्यादा है, जिनके पुण्य कर्म अच्छे हैं, जिन्होंने दूसरों को सुख दिए हैं, जिन्होंने सबकी भलाई की है, ईमानदारी से जीवन जिए हैं, उनका सब कुछ अच्छा है। बीमारी भी अगर आती है जाती है। मैं ये क्लास में नीचे कल थोड़ा सा बताया तो एक भाई आया मेरे पास क्लास के बाद, कहा जो फलाना व्यक्ति है ना, बड़ा ऑफिसर रहा, बहुत बड़ा, कहा 25 जगह तो उसके मकान है भारत में, और अब हाल ये है बस सब कुछ बिगड़ा हुआ, सब कुछ बिगड़ा हुआ। अब पैसा क्या करेगा, 25 मकानों में रहेंगे कहाँ, वो रहेंगे एक रात एक में सोए, दूसरे के लिए प्लेन से उड़ के जाए, दूसरे मकान में सो जाए, चलेगा? पाप का धन सुख नहीं देता। बच्चे बिगड़ते हैं, एक को कैंसर, एक के हार्ट में छेद, तीसरा बहुत बड़ी पोस्ट पर था, छोड़ के आ गया, पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, इसको नींद नहीं आती रात को, हो गया ना काम पूरा, सरकार को लूटा है। अब करप्शन इतना गहरी जड़े जमा चुका है कि उससे बचना तो मोदी जी चाहे कुछ भी कर ले उससे बचना सहज काम नहीं है, परसेंटेज फिक्स है सबके ऊपर तक। तो पाप कर्म परेशानियों के कारण है, इसलिए हम सभी जो पुण्य आत्माएं हैं हमें अब बहुत पुण्य करने हैं। पाप तो सब ने किए हैं, हम सब ने भी किए हैं, लेकिन किसी के पाप थोड़े से ठीक ठीक हैं, समझ गए ना और किसी के पाप अति भयानक हैं, अति भयानक। एक आए कि मेरी दो नसों में बहुत पीड़ा होती है, ज्ञान अभी अभी लिया 3 माह से, इसी के कारण दो नसों में ब्रेन की बहुत पीड़ा होती है। मैं थोड़ा कर्मों की गति भी जान लेना चाहता हूं, मैंने उससे टाइम था मेरे पास थोड़ी सी बात की, बेंगलोर साइड की कोई बहन थी, मैंने कहा क्या हुआ, तुम ये बताओ तुमने अच्छा कर्म किया है जीवन में या कुछ गड़बड़ भी की है। तो पहले तो मनुष्य नहीं बताता ना, फिर खोलने लगी सारा कि नहीं ये हुआ है मेरे से। सार क्या समझ में आया, जिसने दूसरों को पीड़ा बहुत दी है ना, उनको भिन्न भिन्न तरह की पीड़ा मिल रही है। मैं वो उदाहरण दे रहा था आपको कि मनुष्य में ज्यादा सोचने की आदत कैसे खतरनाक है। एक माता, उसका लड़का 12वीं क्लास में, NDA का उसने दिया एग्जाम, NDA होता है ना मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए, नहीं आया नंबर, 12वीं शायद कर ली उसने, नहीं आया नंबर। अब ये माता डिप्रेशन में आ गई है, सोचो। मैंने कहा डिप्रेशन क्यों, अभी तो उसने 12वीं की है, 1 साल और पढ़ा लो फिर देना, नहीं आया तीसरी बार देना, ये बड़े कंपटीशन है, पहले साल में किसी का नंबर लगता है, हाँ चलो 2 बार भी और नहीं भी हुआ तो ऐसा थोड़ा ही मिलिट्री ऑफिसर बनना ही जीवन है, कुछ और जीवन है ही नहीं दुनिया में। अरे पढ़ाओ खुश रहो, ये डिप्रेशन में कहा नींद नहीं आती मुझे, चिंता सता रही है उसका क्या होगा। अब देख लो आप सभी विचार कर लो, कितनी सोचने की आदत और कैसे मनुष्य परेशानियों में चल रहा है। मैंने उसे कहा तुम डिप्रेशन में आ गई, अगर तुम इसे ठीक नहीं करेगी तो तुम रहेगी बिस्तर पर और तुम्हारे बच्चे का तब क्या होगा, सोचो तो सही कुछ। तुम्हें अपने बच्चे की पालना करनी है, उसे योग्य बनाना, तो तुम्हें भी तो ठीक रहना चाहिए या नहीं, या तुम बिस्तर पे लेटी रहो डिप्रेशन में आके सो ही रहो। तो देखो मनुष्य को अब समझदार बनने की जरूरत है, यह है सेंसिटिव नेचर। मैंने कहा क्यों डिप्रेशन हो गया, हम दोनों बहुत खुश थे NDA में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ, बहुत खुश थे, बहुत एक्सपेक्ट किया था, लड़का होशियार है। तो अपने को हम फ्लेक्सिबल बनाए, सरल चित्त बनाए। बाबा ने हमें क्या सिखाया, महान लक्ष्य रखो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन यदि वो चीज न मिले तो स्वीकार करके आगे बढ़ो, हर चीज कल्याणकारी भी तो है, हर चीज कल्याणकारी भी तो है। मान लो वो ऑफिसर बन जाता है और उसको टेररिस्ट से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो क्या होगा? हुआ ना, एक कैप्टन एनडीए में सेलेक्ट हुआ है, गया है ट्रेनिंग के बाद, और बहुत बहादुरी की उसने, लेकिन मृत्यु हो गई। ठीक है, उसने बहादुरी की, उसकी कोई गलती नहीं रही, लेकिन यही तो लाइफ नहीं होता ना कि एनडीए में ही हम चले जाएं। तो महान लक्ष्य रखें, जीवन का बहुत सुंदर फॉर्मूला है, पुरुषार्थ में भी, कार्यों में भी, लौकिक में भी, अलौकिक में भी। हम एक महान लक्ष्य रखें, अच्छा लक्ष्य रखें, सफल हों, बाबा को अर्पित करें, ये नहीं फूल जाएं खुशी में। और अगर सफलता कम रह जाए तो स्वीकार करके दोबारा, ये हमें अपनी मेंटलिटी बना लेनी चाहिए। तो हम सभी एक बात अब सीख लें कि हमें किसी भी बात में परेशान नहीं होना है। बातें आएंगी, हिसाब किताब भी आता है। देखो कैंसर बढ़ता रहता है, अचानक मृत्यु भी हो रही, हमारे यहाँ भी दो चार हो गए ना अभी अभी नजदीक में। स्वीकार भी करना है। आज मैंने उस भाई से बात की, मधुबन का है ना, किडनी में कैंसर, अचानक कहा, अचानक गए, पता नहीं क्या था, बुखार खांसी हो रही थी, लंग्स चेक किया, कहा समझ में नहीं आ रहा है, अहमदाबाद भेज दिया। हाँ, यही सीटी स्कैन कराया, नीचे अहमदाबाद भेजा, ये तो कैंसर है किडनी में, तुरंत निकाल दी। एक किडनी से काम चल जाता है, लेकिन कैंसर के फैलने का खतरा बहुत खतरनाक है। एक भी वायरस रह गया ना, कीटाणु लाखों में बदल जाता है और फिर रिपीट होता है, इसलिए कैंसर रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मन की स्थिति क्या है? कहा ठीक ठीक है। मैंने कहा नहीं, ठीक ठीक नहीं, एक किडनी जाने से तुम मरोगे नहीं, क्यों डॉक्टर? ठीक है ना, एक से भी काम चलेगा, दो डॉक्टर बैठे हैं, खुश रहो, मस्त रहो। मैंने उसे कुछ विधि बताई, पानी चार्ज करके पीना। मैं आप सबको ये अंडरलाइन करा रहा हूं, ये जो वायरस फैल रहे हैं, कोरोना चाइना से जो आ रहा है, और या इस तरह की कैंसर के रोग हो जाए, सभी सिखाएंगे भी, जो सिखाते हैं ना दूसरों को, पानी चार्ज करके पीने से सेफ भी रहेंगे और ये कैंसर के कीटाणु नष्ट भी होते रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सात बार संकल्प करेंगे दृष्टि देके। मैं एक बहुत अच्छा अनुभव तीन जगह सुना चुका हूं क्लासेज में, आज चौथी जगह आपको भी सुनाना है। देखो भोली माताएं कितना सुंदर काम कर देती हैं। दिल्ली का ग्रुप था, एक बहन माता आई, कहा मैं किसी के घर में काम करती हूं, झाड़ू पोछा सफाई, कहा हमारी जो मालकिन है उसको कैंसर हो गया, अभी की बात है नजदीक की, तीन मास के अंदर की, कैंसर सीरियस सीवियर खतरनाक। मुंबई ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया कोई इलाज नहीं है, वापिस ले जाओ। आजकल डॉक्टर्स भाषा बोलते हैं सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता, ले आए वापिस। अभी घर का माहौल कैसा होता है आप सब जानते हैं। इस माता ने उसमें उमंग भरी बात, खुश रहो तुम, ज्ञान दिया इस बहाने उसको। अब देखो वो मालकिन और साहूकार, और ये उसके घर में नौकरानी, लेकिन समय ऐसा था तो उन्होंने इसकी बात ध्यान से सुनी और इसने उनको ये दो चीज शुरू करा दी, पानी चार्ज करके पियो और एक वंडरफुल संकल्प शुरू कराया। देखो ये संकल्प मुझे भी नहीं आता था और आपको भी नहीं आएगा, और सुन लो अमित, उसने कहा सवेरे से और रात तक 21 बार संकल्प करो, मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है। कैंसर कैंसिल, मैं कहा अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोली तुमने, तो मेरे सामने बैठी थी, आई थी मिलने, मैंने कहा कहां से अंग्रेजी सीख ली? कहा आजकल तो बाबा बोलते हैं, सब बोलते हैं ना ये भाषा, कैंसिल करो कैंसिल करो, मैं कैंसर कैंसिल। कहा वो ठीक हो गई, एक मास में वो ठीक हो गई, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था ले जाओ और कहा दोनों ज्ञान में आ गए, ये सबसे बड़ा पुण्य हो गया आपका। देखो एक साधारण माता ने कितना बड़ा काम कर दिया, करता तो ऊपर से है बाबा, लेकिन जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है उसके द्वारा बाबा चमत्कारिक काम करेगा। इसलिए हमें भविष्य की महान सेवाओं के लिए अपनी स्थिति को सुंदर बनाना है। ज्ञान सरोवर में आए हैं सेवाधारी भाई बहने, माताएं कौन कौन आई हैं दो चार दिन में, हाथ उठाओ। सभी आए हैं शायद अभी नजदीक में, तो यहाँ का बहुत फायदा उठाएंगे। कुछ स्वमान अपने बढ़ाने हैं, स्वमान बहुत बड़ी चीज है। और सबने शुरू कर दिया होगा क्या, पांच स्वरूपों का अभ्यास, माताओं ने नहीं किया लगता है अभी तक, अभी आए हैं ना, सुना होगा मुरली में, कर दिया, बहुत अच्छा। पांच स्वरूपों का अभ्यास, अब हमें भगवान की बात माननी है ना, हर घंटे में करना है। ठीक है, बाबा ने पांच मिनट का, हम एक दो मिनट भी कर ले। और हमारे पास बहुत अच्छे साधन हैं यज्ञ में, कौन से, ट्रैफिक कंट्रोल, बहुत ही सुंदर अवसर होता है, एक मिनट भी तीन मिनट भी। कभी हम सकाश देने की सेवा कर लें एक मिनट में भी, और तीन मिनट में या एक मिनट में भी पांच स्वरूपों का अभ्यास कर लें। एक एक स्वरूप को अपने सामने लाना है, जैसे बाबा ने कहा ना आत्मिक स्वरूप सामने आ गया, भले सामने लाओ या भ्रकुटी के बीच में अपने को देखो, उसका चिंतन करो। और बाबा की दो बातें नोट करने वाली है मुरली की, पांच स्वरूपों का अभ्यास करने से मन मना भव सहज हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज है जो योग का सब्जेक्ट बहुत कठिन हो जाता है व्यर्थ संकल्पों के कारण, वो सहज हो जाएगा क्योंकि व्यर्थ संकल्प इससे खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जो बाबा बहुत बड़ी बात कर रहे थे, मन को कंट्रोल करने की, ऐसा समय आएगा, बोलो कैसा समय, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा, संकल्पों को शांत करना होगा, पांच स्वरूपों के अभ्यास से वो भी सहज हो जाएगा। क्योंकि जब परिस्थिति आएंगी और हमारा मन शांत हो जाएगा तो बाबा की क्लियर टचिंग होगी। अब ये करो, मान लो आप गुम नहीं गए हैं और भालू आ गए, होता है ना यहाँ ज्ञान सरोवर में, तो कई केस हो गए आबू में। अभी आपको क्या करना है, अगर मन शांत होगा तो तुरंत टच हो जाएगा, और भागने लगे तो भालू भागेंगे, वो तेज भागते हैं मनुष्य, तो मुश्किल हो जाएगी। तूफान होने लगा, क्या करना है, तुरंत टच हो जाएगा। कर्फ्यू लग गया, गोलियां चलने लगी, हमें क्या करना है, तुरंत टच हो जाएगा। हम बाबा का आह्वान कर लेंगे, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। तो हमें कहीं भी परेशान नहीं होना है। सभी यहां वालों की तो बात नहीं है, यहां वाले तो सब खुश हैं, सेवाओं में बिजी हैं। बहुत अच्छा ये भाग्य दिया है ना बाबा ने हम सबको, जो समर्पित हो गए, किस किस से बच गए, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात। किस किस से बच गए विजय, शुरू करो, सब चीजों से, न कमाने की चिंता न खाने का गम, और माताओं को जो परेशानी उससे बच गए बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, उनकी चिंता, शादियां, धन, कितना झंझट दुनिया में। विष्णु तुम्हें क्या हो गया खजाना मिल गया, देखो माताओं के पास इतना है जितना आपके पास है, बोलो माताएं है, कहो ना है, बच गए बच गए। बैंड बजनी थी, अब मन में बैंड बजने लगे रोज खुशियों के। बोलो बहुत बैठे हैं भाई बिजली वाले, क्या क्या मिल गया, देखो निश्चिंत जीवन, निश्चिंत निश्चिंत जीवन। बाहर देखो कुमार रहते हैं, अब कम से कम खाना भी अपना बनाएंगे तो ऐसे तो है, खाना बनाना ही है, उसका इंतजाम कितना करना पड़ता है, गैस खत्म हो गई तो खाना बनाए रहते गैस खत्म हो गई, हमारी भी हो गई थी नीचे रूपेश चाय बनाने आए हो जले ही नहीं तो एकदम कितना काम करना पड़ेगा, सब्जी लानी, सफाई करनी, कभी पानी नहीं है, क्या क्या है दुनिया में, सबसे बच गए ना, हमारी चिंता कौन करे, ऊपर वाला, कितना अच्छा हो गया, वो सब चिंता करे, दुनिया को कुछ नहीं मिले, बाबा के भंडारे भरपूर रहेंगे, सबको भी खिलाएंगे, सारी दुनिया को खिलाने वाले हो जाएंगे हम सब, तो कितना अच्छा जीवन हो गया, बाबा ने सुंदर भाग्य बना दिया। मुझे तो बहुत अच्छी एक बात लगती है, याद रहती है कि भगवान जब युग बदलने आया, लोगों की तो कल्पनाओं से परे है ना, तो हमें उसने अपने यज्ञ में स्थान दे दिया, अपने यज्ञ के कार्यों में लगा लिया, अपने यज्ञ की जिम्मेदारियां दे दी, अब तुम सफल करो इसे। गीता के तीसरे अध्याय में ही है ये बात, या दूसरे के एंड में ही है, ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर ब्राह्मणों से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही, हे वत्सो अब इस यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो, अब देवता तुम्हारी मन इच्छाएं पूर्ण करेंगे, मन इच्छित फल देंगे। देवता कौन? जो आ रहे हैं सब देवता बनने वाले, हमें उनको संतुष्ट करना होता है ना अपनी सेवाओं से, अब माताएं भी आ गई सबको संतुष्ट करने के लिए, भाग्य है या नहीं? भगवान ने यज्ञ रचा और हमें उसमें बुला लिया, आ जाओ मेरे यज्ञ के लायक तुम हो। देखो साहूकार माताएं तो नहीं आ सकती ना, वो कहेंगे हमें तो अकेला कमरा चाहिए रहने के लिए, एसी भी चाहिए एक तब रहेंगे, और आप सब साधारण माताएं आपस में रहते हैं, पांच सात मिलके रहती हैं, सेवाएं करते हैं, खुश रहते हैं, यहाँ का फायदा उठाते हैं, बहुत बड़ा भाग्य है ना। मैं जब जब ऐसी बात करता हूँ तो मुझे याद आता है बहुत साल पहले जब न ये था न शांतिवन था, मधुवन में एक माता वो इस लेक्चरर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, तो माताएं बहुत आई थी, तो मैं भी दादी के साथ आंगन में खड़ा था, पांच छह वो बहनें आ गई, दादी को देखा मिलने लगी, दादी ने कहा भाई आप सब, लेक्चरर थी वो, तो कहा आप सब तो अपने घरों में अकेले अकेले रहते हो, यहाँ हमने सबको इकट्ठा रख दिया, आपको दिक्कत तो होती होगी, थोड़ी बहुत होती है। तो उन माताओं ने पता क्या उत्तर दिया, देखो बुद्धिमान पढ़ी लिखी थी ना, हम अलग अलग थे दादी, आपने हमें मिला दिया सबको, अब मैं तो देखता ही रह गया उन्हें मैंने कहा वो कहेंगी कि नहीं दादी कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठाक है सब, उन्होंने कहा हम अलग अलग थे आपने हमें एक कर दिया, एक कर दिया ना, या सोने नहाने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन के रहेंगे सभी भाई भी और बहनें भी, एक दूसरे का ध्यान रखना और सुख देना है, बहुत अच्छे स्वमान चुन ले कुछ, सबको अभ्यास करने हैं, हमें अपने स्वमानों का लेवल बढ़ाते चलना है, और ये स्वमान ऐसी चीज है जितना इनका अच्छा अभ्यास होता है उतनी इनकी गहराई समझ में आती है। मुरली में वरदान में था एक दिन, अभी वो मुझे बात बहुत याद रहने लगी, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सारा संसार फॉलो करता है, कितनी गहरी बात है, तुम्हारे संकल्पों को भी संसार फॉलो करता है, उन्हें अपनाता है अपने जीवन में, तो हमारे संकल्पों का भी इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा दूसरों पर, हमारे कर्मों को चाहे वो देख रहे हो या ना देख रहे हो ऑटोमेटिकली संसार फॉलो करता है। इसलिए हम सभी ध्यान देंगे इन स्वमानों पर। मुझे एक बात और याद आ गई, आज मैं थोड़ा खाली हुआ दिन में तो टीवी खोली अपनी, तो वो आ रहा था भारत का डिफेंस एक्सपो लखनऊ में डिफेंस के जो अपने बनाई है ना साधना, वो सब दिखा रहे थे। बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई और 40 देशों के डिफेंस मिनिस्टर आए और 170 देशों ने उसमें हिस्सा लिया है भारत में जो जो बना है। तो मैं सोच रहा था देखो कैसे, बहुत अच्छा फंक्शन मैंने थोड़ी देर देखा, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी ओपनिंग की, फिर स्वागत किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और थोड़ा थोड़ा बोला, तो मैं मुझे बाबा की बात याद आई, आप सबको भी याद आएगी। अब सुनो, अव्यक्त मुरली में थी लेकिन 5-6 मास पहले संडे की मुरली में, आगे चलकर भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, मिल जाएंगे दोनों। माताओं ने समझा हमारा ये ज्ञान योग की शक्ति और उधर नेताओं का राजनीति, दोनों का मिलन होगा और तब ये भारत इतनी ऊंचाई पर जाएगा कि भारत की नीतियों को सारा संसार अपनाएगा। बहुत गहरी बात थी, मुझे तब से याद है, ये नोट कर ली थी मैंने। वो समय 2025 से आना शुरू हो जाएगा निश्चित रूप से। हम सभी और साधना करें ताकि हमारी स्पिरिचुअल पावर, हमारी रूहानी शक्ति फैलने लगे चारों ओर, इसका प्रभाव बढ़ने लगे, क्योंकि ये जो साइलेंस पावर है इससे ही तो सारा काम होता है सूक्ष्म में। चाहे वैज्ञानिक नई रिसर्च करते हैं, चाहे राजनीतिज्ञों के मन में नए विचार आते हैं, हम अपने को जिम्मेदार समझकर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते रहे, क्योंकि विज्ञान भी वैज्ञानिक भी सतयुग का सब कुछ यही निर्माण कर लेंगे। सतयुग में थोड़ा ही साइंस होगी, ये वैज्ञानिक होंगे, यही निर्माण करके हम सबको हैंड ओवर करके जाएंगे, देकर जाएंगे। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उनको सूक्ष्म रूप से मदद करते रहें। तो सभी अपने स्वमान की ऊंचाई बढ़ाते चले। एक है केवल संकल्प करना, वो पहला कदम है, उसके नशे में रहना, उसका चिंतन करना, उससे जो हमारे कर्तव्य जुड़े उनको याद करना, मैं इष्ट देवी हूं, एक है ये याद कर लिया हमने। दूसरा है इसका हमें नशा हो गए, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। अब तीसरा है हमें ये स्थिति बनानी है, मैं परम पवित्र हूं, मेरी दृष्टि से सबको स्नेह मिलता है, मेरे दर्शन करके सभी के मन पवित्र हो जाते हैं, पापी भी मेरे सामने आते हैं तो अपने पापों को स्वीकार करके निष्पाप होने का संकल्प करते हैं, वो इस देवी मैं हूं। भाई भी सब इस देव, ये संकल्प करेंगे तो उसका स्वरूप बनता जाएगा, हम उस स्वरूप में आते जाएंगे। तो इस तरह अपने चिंतन को, अपने नशे को गहन करते ही चलना है। कुछ स्वमान अपने लिए चुन लें, सभी 4-5 कम से कम हमेशा लेकर चलने चाहिए। बहुत अच्छा स्वमान बाबा हमें देते हैं, तुम कल्प वृक्ष के तने हो, जड़े भी हो, तनों में आदि सनातन देवी देवता धर्म बेस। कल्प वृक्ष में देखें तो आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही आगे चलो सब धर्म निकलते हैं, फिर वो हिंदू धर्म में बदलता है द्वापर से, तो सब धर्म पिता इसी के हैं। आज किसने मुझे और एक और अच्छी बात बताई कि ये बात भी सबको सिखाने वाली है कि सभी धर्मों में क्या गड़बड़ हो गई, उनके धर्म पिता जो कुछ सिखा कर गए सब लोग उसके विपरीत ही काम कर रहे हैं, तो धर्मों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। और हम सब अब वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान स्वयं हमें सिखा रहे हैं। तो अपने मन को बहुत अच्छे चिंतन के द्वारा खुश भी रखना है और जब भी आपको समय मिले, देखो माताएं ऊपर रहती हैं, रोटी ऊपर है, आगे भी खुली जगह है, छत है बहुत अच्छी, ऐसी छत दुनिया में मिलती नहीं लोगों को। लोग रेस्टोरेंट में बड़े बड़े होटलों में जाते हैं कि ऐसे पहाड़ों का व्यू मिले, ऐसा होटल मिले हमें, और ऐसी छत तो किसी को नहीं मिलेगी, पैसा खर्च करते। तो वहां बैठा करें, 5 मिनट भी बैठें, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, ऊपर बाबा का कमरा भी है, जो चढ़ सकते हैं ऊपर भी है, सबसे ऊपर, वहां भी जाकर 500 रूप का अभ्यास करें। वहां जाकर आप सकास बहुत अच्छी दे सकते हैं। जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो हमारा योग भी अच्छा लगता है और सकास देने का नेचुरल होता है। और एक चीज सब करेंगे, मैं पिछली बार भी वो बात कही थी आप सबको, ग्लोब को इमर्ज करेंगे अपने सामने। ग्लोब, मैं एक मुरली रिकॉर्ड कर रहा था अभी, उसमें लास्ट में वरदान में एक बहुत सुंदर लाइन आ गई, तुम पारस हो, तुम्हें सबको लोहो को पारस बनाना, सोना बना देना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि लोहे हैं काले हैं, नहीं, तुम्हारा काम उन्हें सोना बनाना, पारस बनाना है। लास्ट में लाइन में बहुत सुंदर बात थी, तुमसे निकलती हुई शक्तियों की किरणें दूसरों पर पड़ रही हैं और उन्हें गोल्डन बना रही हैं, ये तुम्हें अनुभूति होने लगेगी। तुमसे निकलने वाली किरणें दूसरों पर पड़कर उन्हें गोल्डन बना रही हैं, सतो प्रधान बना रही हैं, ये अनुभूति होने लगेगी। हम सब सुनेंगे वरदान में आगे चलकर ये बात। तो हम ग्लोब को इमर्ज किया करें, सभी एक दो तीन बार भी अभ्यास कर लेंगे ना, एक एक मिनट में भी बड़ी आनंदकारी फीलिंग होगी। ग्लोब, ग्लोब माना धरती का गोला, सामने है, इधर हम हैं। योग का अभ्यास कर लें थोड़ा, सर्वशक्तिवान से किरणें आ रही हैं, फिर मुझ आत्मा से किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ रही हैं। एक मिनट अभ्यास कर लें। बाबा ने कभी सीन दिखाया था गुलजार दादी को, मुझे आज वो याद आ रहा था, बहुत पहले की बात है, 30 साल हो गए होंगे, कि वतन में बाबा ने सब शिव शक्तियों को इमर्ज किया और दिखाया सामने ग्लोब है विश्व काला तमो प्रधान, और सब पहाड़ी पे खड़े हैं और कहा बच्चे इसको सकास दो, और सबके मस्तक से किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ने लगी और ग्लोब का रंग बदलने लगा और कुछ ही देर में वो सुनहरा हो गया, गोल्डन। तो कहा ऐसे ही ग्लोब को सकास दिया करो। अब मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूं, ऐसे सकास देने के साथ ग्लोब की सर्वात्माओं को दुआएं भी दिया करें। हम दुआएं देने वाले हैं ना, पूर्वज, इस देव देवियां, सृष्टि में सभी आत्माएं रोग मुक्त हो जाएं। आजकल इसकी बहुत जरूरत है, सभी का जीवन परेशानी और विघ्नों से मुक्त हो, सभी सुखी हो जाएं, सभी के अंदर छुपा हुआ देवत्व जग जाए, सभी का परमात्म मिलन हो जाए, अब एंड में सभी पुण्य आत्माएं बन जाएं, पाप कर्मों से सब बचें, सब पवित्र हो जाएं, अब घर चलने के लिए सब बंधन मुक्त हो जाएं। संकल्प दिया करो, आपको अनुभव होगा हमारा एक एक संकल्प हमें सुख देने लगा। दुआएं देते ही रिटर्न होने लगा है उसका। बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, गुंबज होता है ना गोल गोल, उन दिनों हमारे पास कई पांडवन में होते हैं ना ऊपर एरोप्लेन में दो गुंबज, तो कहा उसके नीचे अगर तुम आवाज करो तो रिटर्न आएगी, इको कहते हैं ना उसे, गूंजने लगेगी। हम लोग भी जाते थे, मामा पहाड़ी है एक बनाई हुई है, मामा पहाड़ी नाम दिया, दूर है थोड़ा, तो वहां अगर हम जोर से बोले ना ओम शांति, तो लगता था ओम शांति गूंजती जा रही। वो पहाड़ियों के नीचे को ढलान है ना, वहां कोई मनुष्य नहीं जाता, आवाज गूंजती जा रही, जैसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, आकाश गूंजने लगा है। तो जब हम ग्लोब को दुआएं देंगे तो रिटर्न होकर वापिस हमारे पास आने लगेगी। सब सुखी हो, हम सुखी होते जाएंगे, हम कल्याणी हैं। बाबा ये बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं मुरली में, तुम कल्याणी हो, सबका कल्याण तुम्हें करना है। हम इसको स्वीकार कर ले, हम कल्याणकारी हैं, हम सुखदाई हैं, अपनी सेवाओं से भी सुख देना है सबको, व्यवहार से बोल से भी बहुत सुख देना है, बचना है किसी को सताने से। क्योंकि मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कर्म कहानी पता चलती है। कोई एक बहुत अच्छी आत्मा जो डिप्रेशन में आ गई, मुझे कहा, अभी अभी की बात है, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है कि मेरे कारण अनेकों को कष्ट हुआ। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है कि जाने से पहले तुम्हें डीप रियलाइजेशन हो रहा है, अब डिप्रेशन में आ गई है, बहुत गड़बड़ हो गई उसके व्यवहार से। और व्यवहार का एक ही कारण था, मैं सबको बताना चाहता हूं, मैं तो सच बोलती हूं, सीधा सीधा बोलती हूं। मैं ऐसो को कहा करता हूं, सच बोलते तो और सीधा सीधा, क्या सीधा सीधा सुनने की शक्ति भी है? जो सीधा सीधा बोलते हैं उनमें सीधा सीधा सुनने की शक्ति नहीं रहती। मैं कहीं जा रहा, यहीं की बात है, चाय पी के जा रहा, दो माताएं ऊपर दूध के आगे बैठी बात कर रही, दो बहनें, अरे वो मुझे ऐसे बुलाती है, इधर आ, प्यार से ही नहीं बोलती कि बहन जी इधर आ जाओ, इधर आ। मुझे फीलिंग बहुत आती है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं सुन रहा था कि देखो व्यवहार कैसी श्रेष्ठ चीज है, वही बात प्यार से कही जाए सुखदाई, प्यार बढ़ाने वाली, और वही बात अभिमान से कही जाए इधर आ तो कैसे पत्थर मारने वाली, तो वो पत्थर अपने को भी लगने लगेगा। तो सभी पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे, चिंतन करेंगे, अब पुण्य ही पुण्य, मैं पुण्य आत्मा हूं और अपने अपने घर की इस देवी हूं, और सब ज्ञान सरोवर वाले अपने स्वमान के लेवल को उठाते चलें। ओम शांति।